ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे अंत देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे ಅಂತ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕೀ ಆಜ್ ಕೆ ಪ್ರವಚನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವನಾ ಕೀ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕ್ಷಾತ್ ನಿಯಮ ಸಾಗರಮಣಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಸಮಸ್ತ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಘ ಕೀ
प्रतिमा के संबंध में चर्चा करने से पूर्व संक्षिप्त में 5 मिनट प्रवचन वात्सल्य के बारे में भी चर्चा करना आवश्यक है। अंदर प्रवचन सुने और एक प्रवचन नहीं सुने तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कैसे हो। प्रवचन किसे कहते हैं ये समझ में आ गया है। प्रवचन अरहत वाणी को अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि को ही प्रवचन कहा गया है। उस ध्वनि के आश्रय से उसको सुनकर उसके बारे में जो बोला जाता है उसको उपदेश कहा गया। प्रवचन सर्वश्रेष्ठ होता है, इसके उपरांत उपदेश होता है। प्रवचन में वत्सल होना, प्रवचन में प्रीति, प्रवचन में अनुराग, ये प्रवचन वत्सलत्व है। जिस जीव को भगवान की वाणी पर वात्सल्य रहेगा, अनुराग रहेगा, वो अवश्य मार्ग पर आएगा। किस मार्ग पर आएगा? मोक्ष मार्ग पर आएगा। किस मार्ग पर आएगा? अपने स्वयं के आत्मकल्याण के मार्ग पर आएगा। यह कल्याण का मार्ग कहीं बाहर तो है नहीं, स्वयं को सोचना है, स्वयं के लिए सोचना है, स्वयं में सोचना है और स्वयं ही चलना है, खुद ही चलना है और खुदा बनना है। खुदा बनने से पहले हमको खोदना पड़ेगा, अपनी आत्मा को ही खोदना पड़ेगा। भीतर अमूल्य रत्न भरे पड़े, उस खदान में 3 रत्नों की प्राप्ति हो सकती है। ये 3 रत्न ही हमारे लिए मार्ग हैं, तो ये 3 रत्न और मार्ग जब भीतर है, हमारे ही खदान में है, तो इस खदान में खोजना किसका कर्तव्य है? स्वयं का। तो उसको खोदना हो तो वात्सल्य आवश्यक है। किसके ऊपर वात्सल्य? प्रवचन के ऊपर वात्सल्य, भगवान की वाणी पर वात्सल्य। हे भगवान, आपने जो प्रवचन के माध्यम से उपदेश दिया है उसी के अनुसार हम चलेंगे, हम छद्मस्थ वाणी के अनुसार नहीं चलेंगे। आप वीतरागी हैं, परमात्मा हैं, तरण तारण हैं, कल्याणकारी हैं, आपके अनुसार हम अपना जीवन बनाएंगे। आपकी वाणी में सत्य ही सत्य है, सत्य के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। हर शब्द में गहराई है, हर शब्द सत्य की ओर इंगित करता है, उसमें फालतू वचन कुछ भी नहीं है। व्यर्थ के वचन आपके वचनों में हो ही नहीं सकते, ऐसे वचन की महिमा आपकी है। ऐसी वचन महिमा संसार में और किसी के पास नहीं है, इसलिए आपका प्रवचन वात्सल्य के योग्य है। किससे वात्सल्य करना? भगवान के वाणी से वात्सल्य रखना, क्योंकि वह हमारा कल्याण करने की करने का सामर्थ्य रखती है भगवान की वाणी। हमारा कल्याण हो इसके लिए भी कुछ वात्सल्य चाहिए अलग से। बाहर में भगवान की वाणी से वात्सल्य चाहिए और अंतरंग में अपने खदान में छिपे हुए जो रत्न हैं उसके प्रति वात्सल्य चाहिए कि नहीं? बस दो के प्रति वात्सल्य पर्याप्त है। अपने आत्मा से वात्सल्य हो और बाहर में भगवान की वाणी के प्रति वात्सल्य हो तो अपना कल्याण निश्चित होगा। और कोई दुनिया में हमें साथ दे या न दे, और साथ दे करके भी क्या होने वाला है? वो क्या धर्म दे सकेंगे? हमारे रत्न हमें लौटा सकेंगे? हमारे भीतर छिपे रत्नों को क्या दे सकेंगे? नहीं। इसलिए भगवान के प्रवचन में हमें डूब जाना चाहिए और उसमें सत्य के मार्ग को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है उसकी विधि विधान का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भगवान की वाणी में हमारे रत्नों को हमें कैसे पाना चाहिए इसका विधि विधान प्राप्त होता है ना? भगवान की वाणी से हमारे अंदर छिपे रत्न हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं इसकी प्रक्रिया, इसको प्राप्त करने की जो विधि है वो ज्ञान हो सकता है ना? कि उसका ज्ञान होता है, हमें उसे पाना है। इसलिए प्रवचन के ऊपर वात्सल्य रखना। यदि आप प्रवचन के ऊपर वात्सल्य रखते हैं तो जिन भक्त हैं वीतरागी भगवान के भक्त हैं, और वो यदि नहीं हो पाया तो गया मनुष्य पर्याय, डूब गया मनुष्य भव, गया एक व्यर्थ गया। केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, अरहंत प्रवचनम शरणम गच्छामि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्ताय प्रवचन सत् प्रवचनम शरणम गच्छामि। जो दुनिया में चारों ओर से दृष्टिपात करते हैं तो कहीं भी सत् प्रवचन दिखाई नहीं देते, केवल भगवान की वाणी हमें तारण तारण बन सकती। ऐसे प्रवचन के ऊपर यदि हम वात्सल्य रखते हैं तो हम स्वयं क्या कहलाते हैं, प्रवचन वत्सल कहलाते हैं। वत्सल वत्सल प्रवचन वत्सल। आपका फेवरेट भगवान उपास्य भगवान वीतराग हो, फेवरेट गुरु वीतरागी हो, फेवरेट शास्त्र वीतरागी हो, उसमें जरा भी कहीं से कहीं तक सरागपना नहीं होना चाहिए। ये तीन ही हमारे लिए कल्याण कर सकते। बहुत ताकत है उनमें, तीनों में, और उसी ताकत को हम भी प्राप्त करने के लिए वात्सल्य रख रहे हैं, क्योंकि हमें भरोसा है इन तीन के सहारे से हम इन तीनों रत्नों को प्राप्त कर सकते हैं निश्चित। प्रवचन वात्सल्य, वात्सल्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई है इसको ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा है। वत्स कहते हैं गाय के बछड़े को, वत्स वत्स, और गाय को कहते हैं धेनु, धेनु यानी गाय, धेनु वत् वत्से अनुराग, धेनुवत वत्से अनुराग, धेनु के समान जैसे धेनु अपने बछड़े पर वात्सल्य रखता है, उस प्रकार से भगवान की वाणी पर और भगवान के वाणी से चलने वालों पर वात्सल्य रखना चाहिए। समझ में आया, सूत्र है ये, सूत्र आपको संभाल लेगा। कोई भी गाय दुनिया की, कोई भी गाय अपने बछड़े को जन्म देने के पश्चात उस बछड़े से वात्सल्य को खत्म करके भाग सकती है क्या? नहीं भाग सकती। वह गाय अपने वत्स को, बछड़े को चाटती है, अनुराग रखती है, वात्सल्य रखती है। वह बछड़ा कहीं दूर भी चला गया हो तो वह स्वयं कहीं दूर है और कहीं घास चरती रहती है, किसी को देखती रहती है, लेकिन देखती हुई भी नहीं देखती रहती है, खाती हुई भी नहीं खाती रहती है, पूरा ध्यान उधर ही रहता है, किधर, बछड़े के ऊपर। ये संसार में प्रकृति नियम है, सृष्टि का नियम है, जो अपने से उत्पन्न होता है उस पर ही वात्सल्य होता है, जो दूसरे से उत्पन्न हुआ है उस पर वात्सल्य नहीं हो पाता। ये संसार बड़ा विचित्र है, इसके नियम तो देखो, इसकी विचित्र दशा तो देखो। जो अपने से जन्मा है हम उनको कितने प्यार से देखते, सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होते हैं, प्राण भी उन्हीं के लिए होते हैं। आप भी अपने बच्चों के प्रति कितना क्या रखते हैं भावों में, ये अनुभव में आता है ना। ऐसा क्यों होता है कि अपने बच्चे ही प्यार लगते हैं और दूसरे के चार दिन के मेहमान होते हैं? वात्सल्य नहीं रखते हैं ऐसी बात नहीं, वात्सल्य रखते हैं आप, लेकिन अपनत्व नहीं रहता। अपना बच्चा जैसा अपने को लगता है, दूसरा बच्चा अपने को ऐसा क्यों नहीं लगता? तो अपना नहीं है इसलिए। तो यहां पर भी ऐसा होना चाहिए, जो प्रवचन अपना नहीं है उस प्रवचन में वात्सल्य क्यों? छद्मस्त वाणी में और प्रभु की वाणी में डिफरेंस तो है। प्रभु की वाणी आपकी वाणी क्यों? क्योंकि प्रभु की वाणी के बिना हम अपने रत्नत्रय को जन्म नहीं दे सकते। त्रिकाल सत्य है, अकाट्य सत्य। जैसे विवाह के बिना संतान की उत्पत्ति नहीं होती, अकाट्य सत्य, वैसे प्रभु की वाणी के बिना, उसके सत्संग के बिना, उसका विचार किए बिना, श्रद्धान किए बिना, समझे बिना और समर्पित हुए बिना, समर्पित हुए बिना, किसके बिना? समर्पित हुए बिना। हमारे अंदर जो तीन संतान हैं, जो हमारे कल्याणकारी, समाधि के काल में समाधि मरण कराने वाले भी अंदर के, अन्यथा हमने अनंत बार जन्म मरण किया है, हमारे मरण को सफल नहीं बनाया। थे अपने परिवार में, अपने ही संतान थे, लेकिन कुसंतान थे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, कुसंतान थी। इन तीनों ने हमारा कल्याण नहीं किया। जो हमारा कल्याण कर सके ऐसी संतान पैदा हो तो वो तीन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हमारे भीतर से ये उत्पन्न होते हैं और इनमें कल्याण करने की शक्ति, इनमें हमारे लिए सहयोग देने की शक्ति है। मरण के अंत समय तक ये तीनों हमारे लिए सहयोग देते हैं। देंगे कि नहीं देंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही सहयोग देने वाले हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, हमको कुमरण से बचाने वाले कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इन तीनों की प्राप्ति बाह्य निमित्त से यदि हो सकती है तो कौन सी वाणी से होगी? भगवंत की वाणी से होगी। और उस भगवान की वाणी को हृदय में विनय के साथ धारण करना चाहिए, तिरस्कार नहीं होना चाहिए। कठिन है ये, बहुत कठिन है ये, कर नहीं सकते, पहले पासून हम बहुत ऐसे करते आए हैं। नहीं, अपने आदत के वशी नहीं होना ये आवश्यक है। अपने वश में रहना ये आवश्यक क्रिया है, पर के वश में रहना ये अवशीपना है। आवश्यक क्रिया क्या है? आवश्यक क्रिया, प्रमुख क्रिया तो यही है कि हम अपने को पाएं, अपने को उपलब्ध हों, हमारी आत्मा का कल्याण, जो संतान मेरे पैदा होंगे वे जन्म के अंतिम समय तक काम में आए, सुख दें, सेवा करें, ये लोक में भी सुख दें और परलोक में भी सुख दें, ऐसी शक्ति जिनमें है उस संतान की हम रक्षा करते हैं। अगर संतान पैदा हुआ और कुसंतान पैदा हो गया तो अपने से उत्पन्न होने के बाद भी उतना वात्सल्य रह नहीं पाता, रह नहीं पाता। लेकिन आखिर अपना ही तो है, क्या करेंगे? हमारा मरण दुर्मरण करा सकता है और कराता ही है, लेकिन फिर भी अपने से ही तो उत्पन्न हुआ है, अपना मानोगे क्या? नहीं, उसको नहीं भी मानोगे तो आपका ही है, किसी से भी पूछो दुनिया में। मिथ्यात्व को हमने ही जन्म दिया है, मिथ्या ज्ञान को हमने ही जन्म दिया है, मिथ्या चारित्र को भी हमने ही जन्म दिया है। ये हमने जन्म दिया है तो ये तीनों बच्चे अपने ही हैं क्या? नहीं। तो इन तीनों बच्चों को समझा बुझा कर, इनको संस्कारित करके सन्मार्ग पर लगाओगे कि नहीं? लगाओ। ये अनादिकाल से तीनों हमारी आत्मा के भीतर जन्मे तीन संतान हैं और प्रत्येक जीव के पास है, प्रत्येक जीव के पास है। किसके नहीं है, किसके यहां नहीं है ये? और इन तीनों को जन्म देने के लिए कोई भगवान की वाणी आवश्यक नहीं, पर हमारे इस संतान पर तीनों को सत संस्कार डालने के लिए भगवान की वाणी की जरूरत है। संस्कार डालने का माध्यम है प्रवचन। किस पर संस्कार डालना है? आत्मा के ऊपर संस्कार डालना। कैसे संस्कार डालना है? हे आत्मा, तू जन्मा है, आर्यखंड में जन्मा है। हे मिथ्या, तू मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तीन हैं, क्रमशः हैं। किसका जन्म पहले हुआ? मिथ्या दर्शन बड़ा बेटा, मिथ्या ज्ञान बीच का बेटा और मिथ्या चारित्र छोटा बेटा। छोटे बेटे से बहुत प्यार, आचरण में क्या रहा है? मिथ्या आचरण, छोटे बेटे से बहुत प्यार है, इसलिए हर समय मुख से यही निकलता है। पहले पासून हम यही करते आए हैं, यही ऐसा ही आचरण हमारा है। तो सबसे ज्यादा प्यार तो आचरण से है, पहले पासून से है। कैसा है देखो ये सृष्टि के नियम, कैसे कैसे उलझ गए हम। चिंतन करे तो सब पता चलता है, सभी मार्ग मिलता है। मार्ग भी अपने अंदर है और कुमार्ग भी अपने अंदर है। चिंतन नहीं करेंगे तो कुमार्ग जैसा का तैसा रहेगा, और चिंतन करेंगे धीरे धीरे कुमार्ग हटेगा, सन्मार्ग आएगा। और सन्मार्ग पर लगाना है इन तीनों को। तीन ही बेटे हैं आपके पास, कितनी संतान पैदा होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा तीन। ज्यादा से ज्यादा तीन। महाराज आदिनाथ भगवान को सुना है कि 102 संतान थी। आदिनाथ भगवान की उम्र बहुत ज्यादा थी, वो कितना भी संतान उत्पन्न कर ले, लेकिन पंचम काल में इतनी उम्र नहीं है। और यहां तीन पर्याप्त है, छोटा परिवार, सुखी परिवार, और बड़ा परिवार दुखी परिवार, लेकिन छोटा परिवार तीन ही उत्पन्न हो गए और सुसंस्कारित नहीं है, संस्कार माता पिता ने दिया नहीं। आत्मा माँ के समान है और उस माँ के तीन बेटे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये हमने ही उत्पन्न किया है। और इन तीन बेटों का जन्म किसी भी पर्याय में रहो, हर पर्याय में ये उत्पन्न हो सकती है। किसी भी पर्याय का मतलब संसार पर्याय, संसार पर्याय में भी अरहंत भगवान को पंच परमिष्टि को छोड़ो, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक को छोड़ो और अग्रत सम्यक दृष्टि श्रावक को छोड़ो, बाकी सभी जीव संसारी जीव इन तीन को जन्म दी हुई, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, अनादिकाल से ये बेटे तीनों साथ चल रहे हैं और इन बेटों से कितना राग हो गया है, अनुराग हो गया है, ये चिंतन करना है। चिंतन के बिना मोक्ष मार्ग की उपलब्धि नहीं होती। चिंतन तो बहुत हो गया, प्रवचन बहुत सुना, ऐसे ऐसे प्रवचन सुना कि ऐसे प्रवचन बोलने में आज तक नहीं आया अपने को, ऐसे प्रवचन सुने बहुत आनंद आया, आया है ना। और यहां तक आनंद आया है कि हम सब कुछ के लिए तैयार हो गए, 27 लोग प्रतिमा लेने के लिए तैयार हो गए, ये क्या कम है, ये किसका प्रभाव है, ये प्रवचन का प्रभाव, भगवान की वाणी का प्रभाव, उसी वाणी को जैसा का तैसा यहां पेशित किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, ये उपदेश का प्रभाव है, ये प्रवचन का प्रभाव है, ये अपने आत्मा में ग्रहण करने वाले सामर्थ्य का प्रभाव है। पात्रता थी, ग्रहण हुआ और आपके भाव जगे, एक उपादान भी चाहिए पड़ता है ना, उपादान न हो तो नहीं होता। हम कितना भी अच्छा प्रवचन करें, जीव को उपादान शक्ति नहीं है तो वो जग नहीं सकता, तो कहीं न कहीं अटका रहता है, बहुत जाल है भीतर, किसी न किसी जाल के भीतर अटका रहता, छूटना बहुत मुश्किल है, समर्पित होना बहुत मुश्किल है, और समर्पित एक बार हो गए तो कल्याण निश्चित। तीन संतान हैं जो गलत संतान पैदा हो रही थी, कुसंस्कार थे, उनके कुसंस्कार होने का जवाबदार वो नहीं, हम ही हैं, आत्मा, हम स्वयं आत्मा इसके जवाबदार हैं। क्या किया, संतान को जन्म तो दिया लेकिन प्रवचन संस्कार नहीं डाला। तो देखो, हमने ही अपने संतान पर प्रवचन के संस्कार, भगवान के वचनों के संस्कार नहीं डाल पाए, ये क्या है, अविचारपना है क्या, नहीं अज्ञानपना है क्या, नहीं ऐसा, ये प्रमाद किसका, आत्मा का, मां का है, आत्मा, आत काया है, मां है, म्हणून त्याचे नाव आत्मा है, आत काया है, मां आहे। अपनी आत्मा ही मां है और उस मां ने तीन को जन्म तो दिया है लेकिन संभाल नहीं पा रही है। देखो, बच्चों को जन्म तो दे और उसको उनको संभाल न पाए तो गलती किसकी, मां की गलती है। आत जो माँ है उस आत माँ को ही पहले प्रवचन के संस्कार चाहिए। माँ के ऊपर जब तक अरहंत भगवान के प्रवचन के संस्कार नहीं आएंगे तब तक बच्चे संस्कारित नहीं होंगे। माँ ही गलत है तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो बाद में बचे, पहले आप हैं। माँ जिनवानी प्रवचन कहलाती है, इस जिनवानी पर वात्सल्य होना चाहिए। घर घर शास्त्र संग्रह करो, भगवान की वाणी को संग्रह करके एक कपाट बनाओ, उसमें विनय के साथ विराजमान करो, उस वाणी की भक्ति करो। हे शास्त्र, हे भगवान की वाणी, हमारा आत्मकल्याण करो, हमारे परिवार पर सत्संग संस्कार डालो, हम इसलिए घर में लाकर के आपकी पूजा कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, दिन रात ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय होना चाहिए। आत्मकल्याण करना हो, सही जैन धर्म का पालन करना हो तो स्वाध्याय सतत चलना चाहिए घर में। जिस घर में स्वाध्याय नहीं वो जैन घर नहीं। देवी घोषणा, सूत्र दे दिया, जिस घर की माँ स्वाध्याय नहीं करती वो जैन घर नहीं है। और उनके तीन बच्चे हो सकते हैं या एक भी हो सकते, दो भी हो सकते हैं, लेकिन जिस घर में स्वाध्याय नहीं होता वह जैन घर नहीं है और उसके बच्चे सुधर नहीं सकते, निश्चित बात है। और खुद भी दुखी रहेगी और बच्चों को भी कुछ नहीं दे पाएगी। खुद के पास कुछ नहीं है तो बच्चों को क्या देगी। तो पढ़ने की आदत डालो, संस्कार डालो। साल भर में 10 दिन आ गए और यहाँ पूजा करके वहां चले गए, ये जैन धर्म नहीं है। आत्म संस्कार का नाम जैन धर्म है। जैन धर्म तो प्रतिक्षण जीवित रहता है, 10 दिन नहीं रहता वो। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये अगर चले गए ना तो हमारा 10 लक्षण पर्व तो प्रति सेकंड चल रहा है और जीवन भर चल रहा है, 10 दिन नहीं, जीवन भर चल रहा है। क्या होना चाहिए भीतर? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो श्रावक के जीवन में ये तीनों आ सकते हैं, लेकिन चारित्र जहां तक ये कहना पड़ेगा कि वो एक देश ही आ सकेगा। मुनियों के समान महाव्रत नहीं आ सकते क्योंकि पाप 5 हैं। पाप कितने हैं? 5 पाप हैं। इन 5ों पापों को थोड़ा थोड़ा कम करता, इसमें से थोड़ा, इसमें से थोड़ा, हिंसा थोड़ा, परिग्रह थोड़ा, कुशील थोड़ा, चोरी थोड़ा, थोड़ा थोड़ा पाप कम करके वह 5म गुणस्थान में प्रवेश करता है। प्रतिमाधारी हमें क्यों बनना है? क्या पाप कम करने के लिए? 5 पापों को कम करने के लिए। क्योंकि ये 5 पाप जीवन में हमें दुखी बनाते हैं, ये बढ़ते रहते हैं, पाप का बंध होता रहता है और पाप के उदय में हम दुख का अनुभव करते हैं, दुख को भोगना हमें ही पड़ता है। इसलिए ये अंदर जो माँ है ना, आत्मा है ना, उस माँ को ही पहले समझाओ, क्या कर रही हो, बिगाड़ रखी अपने संतान को, परिवार को, और खुद भी दुखी हो। इस माँ को समझाओ, भीतर प्रत्येक जीव के पास, शरीर के पास आत्मा है, आत्मा है बगा तेला आहे माँ। और इसमें जन्म देने की शक्ति, आत्मा में सत संतान को भी जन्म देने की शक्ति है तो कुसंतान को भी जन्म देने की शक्ति है। तो किसको जन्म देना है? सत संतान को जन्म देना है, सत संतान को, सत्य संतान को नहीं, सत सत्य नहीं, सत्य, हाँ सत्य ने सतुद वो संतान। तो मां गलत है तो सत्य संतान उत्पन्न होता है, और मां सही है सत संतान पैदा होता है। बहुत अंतर है, तो डबल कर दो तो सत्य होता है, और उसको आधा रखो तो सत्य होता है। सत्य ने समीचीन और सत्य ने मरा हुआ। तो संतान में कोई जीवन ही नहीं, प्राण ही नहीं। वो मां का हित कर सके ऐसी शक्ति उसमें नहीं है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी गलती, जन्म देने वाले की गलती। क्या नहीं किया हमने? भगवान की वाणी पर यही हुआ, यही हुआ। अब विचार करो, जागो, उठो, घर घर में जिनवानी मां की लाइब्रेरी होना चाहिए। रखेंगे ना? सुनाई दिया ना? जागो, उठो, सो नहीं, कितना जगा रहे हैं? जाग रहे हैं? क्या करना है? एक कपाट बनाना है जिनवानी के लिए, एक रूम बनाना है, और एक रूम बना करके उस रूम में जिनवानी रहेगी, और भगवान की प्रतिमा भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ मर्यादा ज्यादा है। रख सकते हैं, बहुत अच्छा है। घर में भी एक भगवान रहे तो सदा सत्संग प्रभु का हम घर में भी पा सकते हैं। जब सामायिक करने के लिए जाएंगे उस कमरे में जाएंगे जहां पर भगवान है, जिनवानी शास्त्र है, उनके प्रवचन, उनके प्रवचन ही प्रवचन शास्त्र है, शास्त्र उनका प्रवचन है, भगवान का प्रवचन। तो वहां जाकर के हम स्वाध्याय करेंगे, वहां जाकर के सामायिक करेंगे, ध्यान करेंगे, जाप करेंगे। धर्म की क्रिया करने के लिए, शांति पाने के लिए जाना हो तो एक कमरा बना लो अपने घर में, एक कमरा, चाहे करोड़ों का खर्चा क्यों न हो एक कमरे बनाने के लिए, कितना भी खर्चा हो, लेकिन उसके लिए खर्चा करो। कैसे बनाओ? किसी से बनाओ। सोने का बनाना हो तो सोने का बनाओ, चांदी का बनाना हो चांदी का बनाओ, जिसमें मन लगता है। बनाओ, लेकिन बनाओ, एक बनाओ, एकांत में बनाओ, वहां पर कोई भी सांसारिक क्रियाकलाप न चले, और एक ऐसा रूम जैसे विद्यार्थी स्टडी रूम बनाता है और एकांत में रहता है, अभ्यास करता है, क्योंकि पास होना है, रैंक में आना है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, साल भर के लिए एकांत में रहना पड़ता है अभ्यास के लिए। ऐसे ही एक धर्मात्मा के लिए आत्म संस्कार डालने का कोई कमरा नहीं होना चाहिए घर में? ये अभी तक सोचा क्यों नहीं? जब पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, बहुत सोचते थे, पढ़ने के लिए जंगल में भी जाकर के बैठ जाते थे। हमने किसी गांव में देखा था, परीक्षा जब आती है तो उस समय गर्मी के दिन, और हम रोज वहां से आते जाते थे, सभी विद्यार्थी जाकर के जंगल में, कोई पेड़ के ऊपर बैठ के पढ़ रहा है, कोई नीचे बैठ के, कोई छाया में बैठकर, कोई नदी के किनारे बैठकर पढ़ रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, रट रहा है, चिंतन मनन कर रहा है। ये विद्यार्थी इतना मेहनत कर सकता है तो अपना कुछ कर्तव्य नहीं क्या धर्म के प्रति? क्या 10 दिन आ गया और पूजन कर लिया, हमारा बात खत्म हो गई, अब अगले साल ही जैन धर्म करेंगे, ऐसा नहीं। जैन धर्म प्रतिनित्य करने का धर्म है। एक कमरा करेंगे ना, किसी भी कोने, छोटा छोटा सा छोटा ही भले बन जाए, जिसका घर छोटा हो उस घर में भी एक अलमारी रखने लायक और एक दो जन बैठने लायक, इतना छोटा कमरा कि अब नहीं बन सकता, वहां प्लाई लगा करके एक कमरा बना लो, अंदर कुछ भी सांसारिक वस्तुओं को ले जाना नहीं, बाहर रखना, पहले इसकी तैयारी हो और फिर प्रतिमा लेंगे ना तो फिर वो सार्थक होंगे। कुछ साधना के लिए एकांत चाहिए कि नहीं? और साल भर तो आप घर में रहेंगे, अभी 10 दिन जहां जैसे यहां रहे मन लगा, बहुत अच्छा मन लगा, क्योंकि पंडाल में बैठे हैं, यहां पर सांसारिक कोई भी विषय का प्रभाव यहां नहीं है, बहुत बड़ा आनंद आया, परिणाम बहुत अच्छे रहे, शुभ में परिणाम रहे, तो ऐसे परिणाम सतत रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचोगे ना? घर में रहना पड़ेगा और घर में रहते रहते परिणामों को अच्छा रखना पड़ेगा, तो कुछ करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा? एक स्वतंत्र कमरा बनाना पड़ेगा, एक स्वतंत्र कमरा, और जब भी सामायिक करना हो वहां जाना, स्वाध्याय करना हो वहां जाना, ध्यान करना हो, जाप देना हो वहां जाना, संसार के बीच में बैठकर सबके सामने बैठकर के आप जाप देंगे, मन कैसे एकाग्र हो सकेगा? तो सबसे पहला जोरदार मेरा कहना है कि हर घर में एक कमरा ऐसा हो जहां पर देव शास्त्र गुरु रहे और आपके सांसारिक वस्तुओं से अलिप्त रहे, संसार के माहौल से वो कमरा दूर रहे। छत पर बनाना सबसे अच्छा, एक रूम, कैसा भी एक सिंपल रूम बनाओ, बन सकता है, दो दीवार खड़ी हो जाएंगी, ऊपर कोई एक छत डाल दो, सीमेंट का पत्रा भी डाले तो चले और प्लास्टिक के पत्रे हल्के आए हैं उसको भी डाले तो चले, लेकिन बनाओ। हम 2-3 महीने वहां रहे, कहां बनाएंगे ना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 27 नक्षत्रों का उदय हुआ है और प्रतिमा के संबंध में वो समझने के लिए आतुर हो गए। 27 घरों में 27 रूम पहले बनना चाहिए, फिर जो अग्रत सम्यक दृष्टि, जिनको सम्यक दर्शन के 25 दोषों को समझकर चतुर्थ गुणस्थान में रहना, आत्म कल्याण करना है, उनके घर में भी ये घर, ये रूम ना रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके घर में भी रूम होना चाहिए। घर घर में देव शास्त्र गुरु का एक रूम होगा तो जैन संस्कार आएंगे, निश्चित आएंगे। जिन भगवंत के प्रवचनों का संस्कार लेना है ऐसा एक स्थान निरंतर, वहां पर जा करके शांत, देखो मंदिर में जब जाते हैं ना तो संसार के इधर उधर बातों को, इधर उधर की बातों को करने से पाप लगता है कि नहीं? लगता है। अपन बहुत सावधानी से जाते हैं मंदिर में, कुछ भी बात नहीं करते, केवल आत्मचर्चा, भगवान के गुणों का स्मरण, चिंतन और भावों को निर्मल रखना, ये काम करते हैं। वैसे ही उस रूम में भी संसार की बातों को भूल कर जाना चाहिए और सामायिक करना चाहिए, तो सामायिक हो, वहीं बैठे हैं और संसार की क्रियाओं को भूला नहीं है तो सामायिक होगा नहीं। भूलने के लिए, अपने आत्मा को संस्कारित करने के लिए एक कमरा अवश्य होना चाहिए और आप कोशिश करें, अगर वह कमरा बहुत अच्छा बनता है तो वहां पर इस प्रकार के भगवान की एक मूर्ति रख सकते घर घर में। आप इधर उधर जाते हैं तो मन भटकता है और घर में ही ऐसे मंदिर रहेंगे, ऐसी मूर्ति रहेगी तो मन कितना कंट्रोल में रहेगा, ध्यान आसान होगा, सामायिक आसान होगा, स्वाध्याय आसान होगा, भगवान के चेहरे को देखते ही सब भूल जाते हैं। लोग कहते हैं महाराज आपके सामने आते हैं ना तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्यों भूलते हो? वीतरागता, वीतरागता में अलग ही जादू होती है, वीतरागता में अलग से ही जादू होता है। और ये वीतरागता हमको झेलना है, ऐसी ही वीतरागता अपने जीवन में आ सकता है, उसी को पाना है। इसलिए एक भगवान और शास्त्रों का संग्रह और गुरुओं का फोटो। गुरु तो रख नहीं सकते गुरु को, महाराज हमारे कमरे में आप हमेशा एक रहो गुरु को नहीं रख सकते, भगवान को रख सकते, शास्त्र को रख सकते, गुरु को तो रख नहीं सकते। हृदय में रखेंगे और वो याद नहीं आते हैं तो एक फोटो लगा, देख देख करके याद करो। आचार्य श्री का बहुत बढ़िया एक फोटो अभी खींचा हुआ है, एकाएक इंटरनेट पर मिला है, जो हमारे पास लगा हुआ है दीवार पर। ऐसे लगता है कि साक्षात सामने ही बैठे हो, आपके रूम में, धार्मिक रूम में ये एक फोटो और भगवान की एक मूर्ति और शास्त्रों का संग्रह हो तो घर में एक मंदिर नहीं बनेगा क्या? और वह मंदिर हमारा कल्याणकारी नहीं होगा क्या? ये मत सोचो कि इसका अभिषेक करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, मत सोचो, इतनी टेंशन मत लो। भगवान से हमें कल्याण का मार्ग पाना है, भगवान की सेवा के लिए नहीं, भगवान हमारी सेवा के लिए। भगवान को देखने से हम किसकी सेवा कर रहे हैं? आत्मा की सेवा। भगवान वीतरागी हमारे सामने हैं, इसलिए हमारे भाव वीतराग बन गए। एक मूर्ति रखो, कोई अभिनय नहीं होगा, आप रोज नमस्कार करो, पूजन करो, अभिषेक करो या न करो, लेकिन पूजन तो करो। पूजन भी डेली करना, ये कोई नियम है क्या? घर गए, बाहर गए तो बाहर गए, भगवान घर में है, भगवान अपना देख लेंगे। पूजन नहीं करने वाला कोई ना हो तो उनको क्या कम है क्या? हमारी पूजा आज नहीं हुई तो नाराज हो जाएंगे क्या? हमारे भगवान वीतरागी हैं, चिंता मत करो, पूजन भी जरूरत नहीं है। क्या पूजन करते हो तुम ऐसे चावल चढ़ा करके, कोई पूजन होता है क्या? पूजन ये कहलाता है भगवान के प्रति जो हम समर्पित हैं, वो सच्ची पूजा है। देव शास्त्र गुरु के प्रति जो समर्पण है, उनके वाणी के अनुसार जो हमारा आचरण बन चुका है, वो हमारी सच्ची पूजा है। हमारा सम्यक दर्शन सच्ची पूजा है, भगवान की ज्ञान सच्ची पूजा है, चारित्र सच्ची पूजा है। 27 नक्षत्रों का उदय हुआ फिर ये सच्ची पूजा नहीं है क्या? ये ऐसे थोड़ी उदय, फालतू उदय थोड़ी हो सकते हैं आसानी से। नहीं, कोई तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, तभी तो भावना आई है कि हम भगवान की सच्ची पूजा करेंगे, ये संकल्प लेने को खड़े हैं। और ये सच्ची पूजा, भगवान की प्रतिमा रखो, दर्शन भी करो तो चलेगा लेकिन रखो। दर्शन करने के लिए तो रखोगे ना, लेकिन महाराज बाहर जब जाएंगे दर्शन कैसे कर पाएंगे? ये मत लाओ, जब रहोगे तब दर्शन करना, जब रहोगे तब पूजन करना, और प्रतिष्ठित प्रतिमा को ही रखना, कोई दिक्कत नहीं। संस्कार आएंगे हमारे घर में, कुल परंपरा से जैन संस्कार बचेंगे, वीतरागी जिनेन्द्र भगवान के संस्कार बचेंगे। आज देखते हैं कि देवशास्त्र गुरु घर में न होने से क्या परिणाम है, शांति सागर महाराज को क्या करना पड़ा है? देखो ना, हमारे मंदिर में, हमारे घर में, एक कमरे में सच्चे देवशास्त्र गुरु अगर होते तो शांति सागर जी को क्या ये करना पड़ता? सोचो, बहुत गंभीर बात है। उनको ऐसा करना क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता नष्ट हो चुकी थी, कुल परंपरा से नष्ट हो चुकी थी। और ये हुआ था कि हम बाजार में जो मिला उसको लाके रखा घर में। तो बाजार में उसका संग्रह ज्यादा होगा, बढ़ता गया वो। इनसे सुना ये ठीक करता है, उसको भी लाके रखा। उनसे सुना ये बहुत अच्छा करता, उसको भी लाके रखा। तो छद्मस्त की वाणी और इधर भगवान की वाणी, छद्मस्त की वाणी बाजार में मिलती है और आपको वो प्रेरणा देता है, ये ऐसा करेगा ये रखो, ये ऐसा करेगा ये रखो। तो रखते संग्रह होता जाता है, तो परिग्रह बढ़ जाता है। मिथ्यात्व कौन सा परिग्रह? अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह। तो अंतरंग परिग्रह, अंतरंग परिग्रह अज्ञान है, मिथ्यात्व है। अज्ञान के कारण से अज्ञान क्यों आया? कि जिनवानी न होने से अज्ञान बढ़ा। तो अज्ञान बढ़ने से क्या आया? ग्रहित मिथ्यात्व आया, ग्रहित मिथ्यात्व अंदर आया। और वह ग्रहित मिथ्यात्व तो संग्रह होता चला गया, और जितने प्रकार का संग्रह हो गया वो इकट्ठा होता गया। गुरु को ये काम करना पड़ा। तो सबसे अच्छा मार्ग आज के दिन मैं बता रहा हूं, प्रतिमा का बताना रह रहा है, लेकिन आज सबसे पहला मैं ये बताऊं कि घर घर में जैन घर हो, ये एक कमरा होना चाहिए। जितने जैन घर हैं एक कमरा धर्म का, बाकी घर संसार का। धर्म के लिए एक घर चाहिए कि नहीं, एक कमरा चाहिए कि नहीं? घर में चाहिए, बनाओ उसको, बनाओ, कहीं भी बनाओ, छत पर बनाओ, नीचे बनाओ, जहां पर थोड़ा बहुत जगह है वहां बनाओ, लेकिन एकांत बनाओ उसको, एकांत। इसमें मिश्रण नहीं करना। तो इससे क्या होगा? बच्चों के ऊपर संस्कार भी होगा, वंश परंपरा से ये देव शास्त्र गुरु घर में रहेंगे तो इसी के प्रभाव आएंगे कि नहीं? घर में भगवान रहेंगे, घर में गुरु रहेंगे, घर में जिनवानी रहेगी, तो बाजार के ये आएंगे ही नहीं। ये नहीं होते हैं इसलिए वो आते हैं, जिनवानी नहीं है इसलिए अज्ञानी बनते हैं, अज्ञानी बनने से छद्मस्तों की बातें सुनने लगते हैं बाजार में जाकर, और वो आ जाता है। ये हुआ है आज तक। इसको जरा नया मार्ग देना है, इसको नया टर्न। ऐसे जा रहे थे, अब जरा ऐसे जाना है, घर घर में प्रभु वाणी गंगा की तरह, शीतल जल गंगा का, गंगा का शीतल जल बहता रहे, वंश परंपरा से वह जल पिए लोग, ऐसी कोई व्यवस्था बना लो। ये बहुत अच्छा है। प्रतिमा, प्रतिमा किसे कहते हैं? उनके कितने भेद हैं? प्रतिमा कितने प्रकार की होती? 11 प्रकार की। प्रतिमा किसे कहते हैं? ये भी प्रतिमा है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा। तो 11 प्रतिमा लेने का मतलब ये नहीं कि 11 प्रतिमाएं बिठाना घर में जाकर, नहीं, ये प्रतिमा नहीं। इन्होंने जो कहा है वो प्रतिमा। तो इन भगवान ने क्या कहा है? अपनी आत्मा को प्रतिमावत बनाने के लिए जो साधना के मार्ग होता है, साधना के मार्ग होते हैं उनको स्वीकार करना, वो 11 हैं। साधना के जो स्थान हैं वे सीढ़ी हैं, वो 11 हैं। उस 11 में हम क्या बनते रहते हैं? प्रतिमा बनते, प्रतिमा को स्वीकार कर प्रतिमा के समान बनते रहते, यानी अपनी आत्मा भगवान बनता जाता है। इन सीढ़ियों पर आत्मा भगवान बनता जाता है। पहली प्रतिमा ले ली तो दर्शन प्रतिमा, सम्यक दृष्टि बन गया, भगवान के निकट हुआ कि नहीं? भगवान में क्या है? सम्यक दर्शन। तो अपने में भी सम्यक दर्शन आ गया, तो हम भी प्रतिमा बन गए, एक देश प्रतिमा। फिर दूसरी प्रतिमा ज्ञान, तीसरी प्रतिमा चारित्र, चारित्र में फिर 11 सीढ़ी, 11 सीढ़ी के बाद फिर महाव्रत, महाव्रत के बाद फिर साक्षात प्रतिमा। महाव्रतों को लेकर के ही हम भगवान बनते हैं ना, तो साक्षात प्रतिमा के समान अरहंत हम बन जाएंगे। प्रतिमा किसे कहते हैं? जिनके माध्यम से श्रावक सम्यक दर्शन को धारण कर पंच पापों का क्रमशः त्याग करते हुए संयम की ओर बढ़ने का अभ्यास करता है, उसे प्रतिमा कहते हैं। वो प्रतिमा है जिनके माध्यम से श्रावक पहले तो सम्यक दर्शन धारण कर लेता है, और फिर बाद में सेकंड कार्य, दूसरा कार्य ये है अब पंच पापों को कम करो। देखो पंच पाप अलग हैं और सम्यक दर्शन अलग है। सम्यक दर्शन धारण करने का मतलब मिथ्यात्व को त्याग कर सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, इन तीन की ही उपासना करेंगे, ये सम्यक दर्शन है। जो रागी हैं, असंयमी हैं, संयम जिसके पास नहीं होता, संयम का मतलब क्या, संयम यानी पंच पापों का त्याग नहीं, जिसको ऐसे जीवों को, तो सामान्य रूप से सभी हम असंयमी हैं, अभी संयम धारण नहीं किया है, प्रतिमा धारण करेंगे तो संयमी बनेंगे, प्रतिमा धारण करेंगे तो संयमी बनेंगे। तो संयमी बनेंगे तो क्या बने हम, संयमी का मतलब क्या, पंच पापों को एक देश त्याग किया है, यही संयम है। पंच पापों को एक देश त्याग कर दिया, यही अपना संयम है। इस संयम को धारण करने से आत्मा का कल्याण अवश्य होने वाला है। तो प्रतिमा किसको कहा, जिसके माध्यम से श्रावक सम्यक दर्शन को धारण कर पंच पापों का क्रमशः त्याग करते हुए संयम की ओर बढ़ने का अभ्यास करता है। ये अभ्यास ही है प्रतिमा भी, प्रतिमा भी अभ्यास है। किस ओर बढ़ने का अभ्यास, संयम की ओर। तो ये संयम नहीं है क्या प्रतिमा, संयम है लेकिन एक देश संयम, और एक देश संयम है इसलिए असंयम भी है साथ में, तो संयमा संयम हो गया। तो संयमा संयम क्यों लिया जाता है, पूर्ण संयम तो ले नहीं सकते थे, और धीरे धीरे अभ्यास करके लेना था, इसलिए हमने प्रतिमाएं ली और कुछ पाप त्याग कर दिए, कुछ पाप जो बचा है उसको 11 सीढ़ियों में क्रमशः थोड़ा 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 कम करते करते पांच पाप को संपूर्णतः त्याग कर देता है। 11 सीढ़ियों पर हम क्या करते हैं, पंच पापों को कम करने का प्रयत्न करते, और जैसे जैसे ऊपर की सीढ़ी पर जाएंगे वैसे वैसे पाप और कम होता जाएगा। देखो कैसा मार्ग बताया भगवान ने, जिसको एकदम सर्कस करने का सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, उनके लिए भगवान ने क्या बताया, हाँ तुम धीरे धीरे अभ्यास करो, पहले अभ्यास करो, अभ्यास करके फिर बाद में सर्कस करना भी आ जाएगा। महाव्रत सर्कस है, एक साथ किसी को नहीं होता, वो धीरे धीरे करना चाहता है, तो धीरे धीरे करने के लिए हमारे 27 नक्षत्र भी पर्याप्त है। ये सर्कस करेंगे आगे जाकर के, निश्चित रूप से सर्कस करना भी आ जाएगा। सबसे टेढ़ा काम है सर्कस करना, योगासन करना सरल है, सर्कस करना सर्कस देखने का ये लाभ है कि कम से कम योगासन से सर्कस कठिन है ये पता चलता, ये लाभ, ये ज्ञान आता है। तो अपन करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, पंच पापों को कम करेंगे, परंतु प्रतिमा लेने से पहले क्या लेना पड़ेगा? सम्यक दर्शन को 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन को धारण करना पड़ेगा। 25 दोष कैसे होते हैं? सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य कहीं उलझ गए ना, तो उसमें दोष लगेंगे। ये नहीं करना है। ये नहीं हुआ ना, तो 25 दोष में से कोई एक भी दोष आपको लगेगा नहीं। अपने धन को लेकर घमंड नहीं करना। क्या करना? धन है, धर्ममय जीवन व्यतीत करने के लिए धन मिला है, पुण्य के उदय से मिला है, धर्म करो, धन से धर्म हो। परंतु धन के लिए धर्म को मत मिटाओ। और धर्म कैसे मिटता है? धन को लेकर के अभिमानी बनकर के बैठ गए, धन को लेकर के अहंकार आ गया, मद आ गया, घमंड आ गया। तो धन तो है, लेकिन नष्ट क्या हुआ? धर्म का हानि हुई, धर्म की हानि हुई, सम्यक दर्शन नष्ट हुआ। तो सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि को कैसे जीना चाहिए? मद रहित जीवन होना चाहिए। धन हो तो मैं धनी, दूसरे को देखकर मैं धनी हूं, इस प्रकार के परिणाम नहीं करना। क्या है? चक्रवर्ती अभिमान नहीं किया और अपन छोटे मोटे इतने से भी नहीं है और अभिमान आ जाता है धन को लेकर के। चक्रवर्तियों ने देखो कैसे संभाला परिणामों को। इतना धन, इतना अपाट अक्षय भंडार होने के बाद भी वो कभी भी धन को लेकर, राजमहल को लेकर, मकान को लेकर, अपने घर में एक टीवी आती है तो भी अपने को अभिमान आता है, इसके घर में टीवी नहीं और हमारे घर में टीवी है। कैसे अज्ञानता है देखो इस जीव की। किस किस पदार्थ को लेकर के घमंड करता है, कैसे टेढ़ा होकर के बैठ जाता है, उसकी सोच ही टेढ़ी बन जाती है वस्तु को लेकर। और ये जड़ वस्तु है, पर वस्तु है, आत्मा तो है ही नहीं, तो पर को लेकर क्यों घमंड करे? कितनी बड़ी अज्ञानता है ये। आत्मा को नहीं जानता है इसलिए ऐसा होता है। जो आत्मा को जानता है उसको कभी भी कोई किसी भी प्रकार का मद हो ही नहीं सकता। मैं खुद कौन हूं ये समझ में आ गया ना, भीतर अंतरंग दृष्टि हो गई ना, तो बहिरंग दृष्टि करने पर कभी भी मद होगा नहीं, क्योंकि वो जानता है आत्मा अलग है, ये पर वस्तु अलग है। पर वस्तु आत्मा के धर्म के पोषण के लिए, इस पर क्या गर्व करना? ये गरीब है, ये धनहीन है, मैं साहूकार हूं, क्या साहूकार पने का वो कर रहे हो? ये अज्ञानता। इस अज्ञान को सम्यक दर्शन आने के बाद अज्ञान को हम नाश कर देते। सम्यक दर्शन अपने जीवन में आ गया तो वो अज्ञान को समाप्त कर देता, घमंड समाप्त हो जाएगा, समता आएगी, क्षमाशील रहेगा, कभी क्रोध नहीं करेगा, क्रोध भी चला जाता है। धर्म आने पर तो जो हमारे लिए हानिकारक परिणाम है वे सभी भाव चले जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? अनुभव करके देखो, सम्यक दृष्टि बन करके देखो, बाहर में कोई भी वस्तु को देखकर आपको राग द्वेष नहीं होगा। और ये धर्म है, ये असली धर्म है, ये 10 लक्षण से बढ़कर के है, ये प्रति समय होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। 10 लक्षण में 10 दिन आकर के यहाँ बैठ करके पूजा, किसकी पूजा की? इसी क्षमा की पूजा की है ना, तो क्षमा धारण ही करो तो इस पूजा की जरूरत क्या है? मुनि महाराज कहाँ करते इस क्रियाकांड को? क्योंकि उन्होंने धारण ही कर लिया है, तो उनका जीवन प्रत्येक सेकंड क्षमा में लगा हुआ है। क्षमा तो उनको प्राप्त है, आप तो प्राप्ति के लिए वो अनुष्ठान कर रहे हैं, कितना फर्क है। आपको तो प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करना पड़ रहा है, मुनि महाराज अनुष्ठान कुछ भी नहीं करते, वो भीतरी अनुष्ठान में लगे हैं। कोई भी संदर्भ आया हम क्रोध नहीं करेंगे, कोई भी संदर्भ आया हम घमंड नहीं करेंगे, कोई भी संदर्भ आया हम छल कपट नहीं करेंगे, कोई भी संदर्भ आया हम किसी भी पदार्थ से प्रभावित होकर उससे लोभी नहीं बनेंगे। कितना बड़ा धर्म है ये? ये है असली जैन धर्म। ये श्रावक के जीवन में एक देश आ सकता है, करना चाहिए। और फिर एक देश आ गया तो ये बाहरी अनुष्ठान 10 दिन का करो न करो बराबर है, आप तो बढ़ रहे हैं धर्म के मार्ग पर, असली धर्म आपके जीवन में उतर गया है। बहुत सरल है, समझेंगे तो सरल है, नहीं समझेंगे तो हम उलझे ही रहेंगे। पहले पासून 10 दिन आया, चलो 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 चलो, मंदिर में गए, 10 दिन पूजा की, खत्म हो गया, अगले वर्ष लो कर या बाय बाय टाटा। गए 10 दिन और अगले साल पुनः आ जाते हैं, बेचारे वो 10 दिन भी क्या करेंगे आपके प्रति, आप केवल क्रियाकांडी बन करके रह गए, 10 दिन क्या कर पाएंगे। अगले साल भी ऐसा ही कहोगे, आए थे 10 दिन रखा, अगले साल मोर डुबो दिया, छोड़ के आ गए, ऐसा ही हो रहा है। सुनकर भावना भा रहे हैं, आपको पीड़ा हो रही है। आपको पीड़ा हो रही है, हम कर तो रहे हैं। ऐसी पीड़ा होना चाहिए, ये अच्छा लक्षण कि महाराज कर तो रहे हम, हाँ कर तो रहे, यही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सुनना चाहता था इसलिए हम बता रहे थे। सब समझ, सबको समझ में आ गया है धर्म कैसा है, क्या है, कहाँ रहता है, कैसी शांति मिलती है, कैसा सुख मिलता है, समझ में तो आ गया ना। वही ज्यादा करना, जो सत्य है, जो वास्तविकता जहाँ है वहां शक्ति लगाओ, ज्यादा वहां शक्ति लगाओ, इसको छोड़ो, ये क्या है, 10 दिन आए इधर का द्रव्य उधर कर दिया और चले गए, ये कोई बात है क्या, नहीं। इससे भी हम वही सीख रहे थे जो वास्तविक है, उसको पाना चाह रहे थे, पा लिया, 10 दिन कर लिया, हो गया, इसको ज्यादा महत्व नहीं देना, आत्म साधना को महत्व देना, ये आर्यखंड है। देव लोग आत्म साधना नहीं कर पाते, यहां 27 लोग तैयार हो गए, एक भी देव को बुला करके बताओ, मैं उनको संयम दे दूंगा, वो लेने के लिए तैयार हो जाए, हो सकता है क्या, देवगति के कोई भी देव, भवनवासी, यंत्रवासी, ज्योतिष, वैमानिक, कोई भी देव, एक भी देव स्वर्ग में पंचम गुणस्थान वर्ती नहीं है, साधना कर ही नहीं पाता हो। जो साधना नहीं कर पाता आत्मा का, उनके लिए ये अनुष्ठान है बाहरी, भक्ति करने का एक माध्यम है। 10 दिन तो भगवान के गुणगान गाकर, भक्ति करके, पुण्य कर्म बांधकर वो चले जाते हैं। ये देवों के लिए है, ये पूजा अनुष्ठान आपके लिए मेजर नहीं है, आपका मेजर विषय संयम है, साधना है, देवों को पूजन मेजर विषय है, क्योंकि उनके जीवन में साधना तो आ ही नहीं सकती। आप साधना की ओर ध्यान दें अधिक से अधिक तो ये मनुष्य पर्याय सफल है, प्रतिमाधारी बनने की ओर ध्यान देंगे तो आपका जीवन सफल है। और चौथे गुणस्थान में भी आपका मरण हुआ तो देवों में और आपके मरण में क्या फर्क रहा, वे भी सम्यक दृष्टि, आप भी सम्यक दृष्टि, वो भी चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, आप भी चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, दोनों उसी गुणस्थान में मरण किए तो फायदा क्या रहा। और देव दौड़ दौड़ करके आपके पास आते, अनुवृत्ति के पास, कोई कष्ट आया हो तो बताओ, हम सहयोग पहुंचाएंगे, वे आपके पास आते हैं, क्यों आते हैं, संयम धारण किए हैं इसलिए आते हैं, इस संयम से प्रभावित होते हैं जी देव। आप जो प्रतिमाधारी बन गए ना, इससे प्रभावित होते हैं, वो सील है, देवगति में सील पालन नहीं हो पाता, सील का मतलब पंचशील, पंचशील, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। परिग्रह छोड़ नहीं सकते, अहिंसा का पालन नहीं कर सकते, सत्य बोल नहीं सकते। परिग्रह रखने वाला सत्यवान हो ही नहीं सकता, तो देवलोक परिग्रह छोड़ नहीं सकते, इसलिए पंच कुशील से बचकर पंचशील का पालन भी नहीं कर सकते। ये परिस्थिति है। तो देवों के समान हम क्यों रहे? नहीं, देव से तो हम श्रेष्ठ हैं, हम बड़े हैं, देव हमारे पास आते हैं, देव हमारा सम्मान करते हैं। किस वजह से? उनसे एक कदम आगे हैं और आप संयमी बन सकते हैं, इसलिए एक कदम आगे आकर के वे आपकी उपासना करते हैं। देवों के लिए आप उपास्य हैं और देव आपके उपासक हैं। समझ में आ रहा है? ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है, ये प्रवचन कहता है, जिनेंद्र भगवान का प्रवचन। उस प्रवचन में वात्सल्य रखना। कैसे वात्सल्य? हम क्या बन सकते हैं वो हम बनेंगे, उससे अनुराग रखना, अनुराग रखकर वैसे बनने का प्रयत्न करना। तो प्रतिमा धारी कोई बन नहीं सकते, ऐसी बात नहीं। प्रतिमा लेना भी बहुत सरल है, बहुत सरल है, परंतु थोड़ा प्रमाद छोड़ना पड़ता है, थोड़ा प्रमाद छोड़ना पड़ता। प्रमाद छोड़े बिना तो साधना नहीं बनती, इतना तो निश्चित है। तो थोड़ा सा प्रमाद छोड़कर आप मार्ग पर लगेंगे, सब कुछ हो जाएगा। पहली बात, प्रतिमाधारी बनना हो तो 25 दोषों से रहित सम्यक तो चाहिए, ये हो गया। दूसरी बात, प्रतिमाधारी बनने वाले के लिए पांचों पापों को एक देश त्याग करना पड़ता है। तो जो परिग्रह है वो आवश्यक जितना आपके लिए स्वतंत्र, यानी व्यक्तिगत रूप से सोचना, मेरे जीवन के लिए जितना धन है, जितना सोना, जितना चांदी, 10 पदार्थ, मतलब क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, वस्त्र, पात्र, ये जितने आपके लिए आवश्यक हैं, संयम जीवन व्यतीत करने के लिए जितना आवश्यक है आवश्यक को रखो, शेष को त्याग करने की भावना रखो और उतना त्याग कर दो, एक मर्यादा बना दो और समय समय पर त्याग करो उनको। जितना पहली बार में त्याग किया ना, ठीक है, अभी इतना आवश्यक था, अभी अनावश्यक था, अभी छोड़ दिया, बाद में फिर जो बचा था उसमें जो अनावश्यक दिखता है उसको और त्यागना, बाद में फिर उसमें से जो अनावश्यक दिखता है उसको भी त्यागते रहे। इस प्रकार से परिग्रह को कम करते 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 जाने का नाम प्रतिमा है। इससे संयम का अभ्यास बढ़ता है, कर्म निर्जरा बढ़ती है, आत्मा का कल्याण होता जाता है और संयमी बनने से हम देवों के द्वारा भी उपास्य हो जाते हैं। देव हमारी प्रशंसा करते, हमारी पर्याय में संयम नहीं होता। अगर देवों को संयम होता ना तो समूह शरण में आकर के सब दीक्षा ही ले लेते हो। असंख्यात देव हैं और इस धरती पर मुनियों की संख्या इतनी हो जाती, देव दीक्षा ले ले तो इतनी दीक्षा संख्या हो जाती कि देवों को देव आहार चौका लगाने के लिए देवलोक से आते और आ सकते हैं देवलोक। किंतु देव गति में यही पंच पापों का त्याग संभव नहीं है, इसलिए वे न तो आहार दे सकते हैं और न संयम धारण कर सकते हैं। ये परिस्थिति वहां, तो हम उनसे कितने ऊपर के हैं ये सोचना है। मनुष्य गति का ये समझ में आना चाहिए, अन्यथा हम पूर्व ही धारणा में रहेंगे ना तो आगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली। कम से कम इतना समझ में आना चाहिए कि देव गति से हम श्रेष्ठ हैं, हम आराध्य हैं और वो उपासक हैं। पूजा किसकी कौन करे? उपास्य की, उपासक पूजा करता है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जल का, कैसे जल उपयोग करना इसका भी बताना है और प्रैक्टिकल बताना है आपको, प्रैक्टिकल रूप से किस प्रकार के जल को कैसा उपयोग में लाएं, कैसे छाने, कैसे उसमें रहने वाले जीवाणुओं को उस पूर्व जल में उसको छोड़ दें सुरक्षित रूप से, इसकी चर्चा करना है। कब करेंगे? प्रतिमा लेने के कितने लोग हैं, हाथ उठाएं। कल 27 लोग थे, आज संख्या बड़ी है क्या, देखना है। हो सकता है ना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस उतनी है, 27। उधर भी दो है क्या, वो 27 नक्षत्र उतनी है, 28 नहीं बनेंगे वो। तो इन लोगों के लिए, 27 लोगों के लिए पानी छानने की विधि सिखाना है, वो सबसे महत्वपूर्ण काम है। और उसकी जानकारी देने के लिए मुझे पौन घंटा लगेगा, पानी कैसे छानना इसके संबंध में मुझे पौन घंटा टाइम चाहिए। कब देंगे, कहाँ आएंगे? इधर ही आएंगे, प्रवचन में बता देंगे। ठीक है, दोपहर को प्रवचन में बताएं। ठीक ठीक है ठीक, अपनी नींव मजबूत हो गई, भूमिका मजबूत हो गई। आ जाएगा ना। कई प्रश्न होते हैं, उनको भी उठा उठा करके पूछना। हाँ, हम कुछ समझा देते हैं तो उसमें और प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उनका समाधान लेना, तो फिर वो प्रतिमा निर्दोष पलेगी। क्योंकि अहिंसा धर्म है, उन जीवाणुओं को रक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कैसे उसको छान करके रक्षण करना, इस बात की चर्चा हम दोपहर को प्रवचन में करेंगे। 9:15 बज गया, 10 मिनट ले ले, और 10 मिनट ले ले, कैसे आज ही, आज कुछ पूजन बचा नहीं इसलिए। ठीक ठीक ठीक, देखो 11 प्रतिमाओं का नाम सुनाता हूँ और संक्षिप्त में उसका स्वरूप भी बता देता। दर्शन प्रतिमा पहली, लिखोगे क्यों सुनोगे, लिखने की जरूरत नहीं, पुस्तक में ही लिखा हुआ, सम्यक ज्ञान संस्कार पुस्तक ले लो, उसमें लिखा हुआ एकदम पाठ है, उसमें सभी लिखा हुआ क्या करना क्या नहीं करना। अब देखो पहले सुनो, लिखो नहीं इसको, लिखते समय सुन नहीं सकते, पहले सुनो। दर्शन प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा ने इस सम्यक दर्शन को धारण करने की बात इसमें होती है। सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होकर पालन करना, ये दर्शन प्रतिमा है। व्रत प्रतिमा, इस व्रत प्रतिमा में 12 अनुव्रत लिए जाते हैं, 5 अनुव्रत 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 अनुव्रतों का पालन करना होता है। इन्हीं 12 अनुव्रतों का पालन करने के लिए पानी को कैसे छानना चाहिए ये बात आती है, तो वो सभी प्रक्रिया समझाना है। ये 12 अनुव्रतों का पालन निर्दोष करना, ये दूसरी प्रतिमा है। प्रतिमा लेने वाले पहली प्रतिमा लिए बिना दूसरी प्रतिमा नहीं ले सकते, और दूसरी प्रतिमा लिए बिना तीसरी प्रतिमा नहीं ले सकते, तीसरी लिए बिना चौथी नहीं, यानी नीचे नीचे की प्रतिमाओं को छोड़कर ऊपर के ले लें ऐसा यहाँ विधान नहीं है, क्रमशः ही लेना पड़ेगा। पहला ले लिया है तो पहला ले लिया है ये चलेगा, लेकिन पहला को छोड़कर दूसरा ले लेंगे ऐसा नहीं चलता, क्योंकि सम्यक दर्शन से रहित ऊपर के जो प्रतिमाएं हैं वो पंच पापों के त्याग के लिए है और पहली प्रतिमा मिथ्यात्व के त्याग के लिए। तो मिथ्यात्व को त्याग नहीं किया और पंच पापों को त्याग करते चले गए और 11 प्रतिमा का पालन कर लिया। दर्शन प्रतिमा को छोड़कर दूसरी से लेकर 11 को स्वीकार कर लिया और परिग्रह इतना कम हो गया कि वस्त्र मात्र परिग्रह रह गया। तो क्या ये सफल जीवन है? तो बाह्य व्यर्थ बाह्य त्याग जो है वो व्यर्थ हो जाता है। दूसरी प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक पंच पापों को कम किया जाता है। समझ में आ गया? पंच पापों को कम किया जाता है और पहली प्रतिमा में क्या किया जाता है? सम्यक दर्शन का पालन किया जाता है। इतना तीसरी प्रतिमा का नाम है सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा का अर्थ होता है कम से कम 3 बार सामायिक करना। सामायिक करने का तात्पर्य क्या? समता भाव रखना। समता भाव कैसे रखे? तो सांसारिक सभी क्रियाकलापों को रोककर थोड़ा ध्यान करने के लिए बैठ जाएं और ध्यान में समता रखने का अभ्यास करें। ये समता तो आने वाली नहीं है, मुनि अवस्था में ही आती है, लेकिन मुनि अवस्था की समता आ जाए इसका अभ्यास यहां चल रहा है। तीसरी प्रतिमा में कैसी समता रखना? तो ध्यान में बैठ करके सांसारिक सभी क्रियाकलापों को ज्ञाता दृष्टा होकर देखना, राग द्वेष नहीं करना। जो भी हुआ है हुआ है, अपने को राग द्वेष नहीं करना, अशांत नहीं होना, दुखी नहीं होना, मन में विषाद क्लेश नहीं करना, शांत होकर के बैठना, ये समता है। कुछ नहीं क्या करना उसमें? कुछ नहीं करना, जो कर रहे थे उसी को छोड़ना। क्या कर रहे थे? हर्ष विषाद हुआ था, संक्लेश हुआ था, क्यों? वो झगड़ा हो गया, घर में झगड़ा हो गया, तो संक्लेश नहीं करना। झगड़ा हो गया, अब भूल जाओ। बच्चों को कैसे समझाते आप? क्या हो गया, क्यों रोते हो? तो हमको उनने मारा, मारता मार दिया, अब भूल जाओ। हाँ, तो बच्चा भूल जाता बच्चा भूल जाता है ना। वैसा सामायिक करते समय आत्मा को समझाना चाहिए, जो माँ है उसको ही समझाना चाहिए। क्या हो गया? ये ऐसा ऐसा हो गया, टेंशन मत लेना, नहीं तो सामायिक नहीं होगा। भूल जाओ उसको, भूल जाओ, भूल जाओ और सामायिक करो, शांत हो जाओ। तो शांति से बैठना। क्या करना उसमें? कुछ भी नहीं करना, यही करना। सामायिक में बैठ करके क्या करना ये पूछते हैं। जो कर रहे थे वो सब छोड़ना और जो हो रहा है उसको भी छोड़ना। अंदर संक्लेश हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा। राग द्वेष हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसको छोड़ने का नाम सामायिक। और कैसे बैठना? शांत बैठना, इतना शांत बैठना, इतना शांत बैठना कि बिल्कुल नींद आ जाए। तो आ ही जाती है, बिल्कुल आ जाती है। मेडिटेशन एक ऐसी औषधि है जो जिसको गोली खा करके नींद लेनी पड़ती है, उसके लिए सबसे अच्छी गोली है मेडिटेशन, ध्यान। सोने के लिए बहुत अच्छा, सोना हो तो इधर आओ, मैं सिखाता हूँ। उधर बाजार की गोली खा करके आप सो रहे हैं, वो तो जबरदस्ती हो रही है। गोली खाए बिना नींद आ सकती है? आओ इधर सिखाते हैं हम, और ध्यान भी सिखाते हैं और निद्रा भी सिखाते हैं, दोनों हो जाएगा। नींद नहीं आना ये रोग है। और एक नींद क्यों नहीं आती मालूम? कि हम कहीं न कहीं अटके, बहुत तेजी से अटके, बहुत जोर से अटके, बहुत जोर से चिपके हैं, कहीं जोर से उलझ गए हैं। उलझा हुआ मन नींद नहीं कर सकता, उलझा हुआ मन नींद नहीं कर सकता, और इस नींद से वह ऊब जाता, नींद भी नहीं आती। और ध्यान करो, ध्यान भी नहीं होता। जिसको नींद नहीं आती वो ध्यान भी नहीं कर सकता। जिसकी ध्यान नींद बिगड़ गई है ना, वो ध्यान करने का पात्र नहीं है। जिसको अच्छी तरह से नींद आती है वही ध्यान करने का पात्र है। जिसको नींद अच्छी तरह से आकर के चली गई है वो बहुत स्वच्छ मन से ध्यान कर सकता है। और सबसे अच्छा सामायिक कब होता मालूम? सुबह उठने के बाद, एकदम फ्रेश रहता मन, वचन, काया, काया हल्की, मन हल्का, वचन प्रशस्त, भगवान याद आते हैं, भगवान सामने खड़े हो जाते हैं तो हटते नहीं सुबह के सामायिक में। तो ऐसा तीन बार सामायिक करने का नाम सामायिक प्रतिमा है। क्या करना इसमें? कुछ नहीं करना, यही करना, बैठ जाना, इधर उधर नहीं जाना, जितने समय के लिए बैठना है उतने समय के लिए बैठ जाना। तो कितना? कम से कम 48 मिनट बैठ जाना चाहिए। मुनि को तो सदा सामायिक, हमेशा सामायिक में ही रहते हैं। राग द्वेष नहीं होता, किसी वस्तु से अटैचमेंट नहीं है, तो ये क्या है? यही सामूहिक है, यही सामायिक। और ऐसा नहीं होता है इसलिए श्रावक को सामायिक नहीं होता, सामयिक होता है, ये कहा है। सामयिक, सामयिक होता है। सामयिक यानी समय को बांधकर मैं इतने समय तक कुछ विकल्प नहीं करूंगा, ऐसा बांध लेता है और फ्री हो जाता है, बैठ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ये समय को बांध रहा है। मुनि को समय को बांधना ही नहीं पड़ता। मुनि समय को बांध करके कभी कुछ करते ही नहीं, कभी भी बैठो। सामायिक हमेशा करना चाहिए, लेकिन वो हमेशा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम तीन बार करने को कहा। 48 मिनट बैठना, कम से कम तीन बार। इसको क्रियाकांड मत बनाओ, इसको क्रियाकांड मत बनाओ। टाइम आ गया, बैठना ही है, टेंशन नहीं जा रहा है। टेंशन मुक्त रहना हमेशा, ये असली सामायिक है। सामायिक भी क्रियाकांड नहीं बनना चाहिए कि समय आ गया बैठना पड़ रहा है यूं बैठ रहे हैं। समय आ गया बैठ रहे नहीं, सदा ही समता में रहो ना। अब ध्यान का अभ्यास हो इसलिए तीन बार का कहा, ध्यान का भी साथ साथ अभ्यास हो। ध्यान बिल्कुल न करे तो नहीं चलता। सामायिक अलग है, ध्यान अलग है, ध्यान अलग है। ध्यान का मतलब मन वचन काय को स्थिर रखना, हिलना नहीं, डुलना नहीं। और मन को कैसे रखना? मन को एकदम फ्री। क्या करना मन में, क्या विचार करना? कुछ नहीं करना, यही करना। विचार आते हैं तो विचार आने दो, उनको भी जानना और देखना। विचार कौन से आ गए? ये आ गए, उसको जानना देखना। हर्ष विषाद भर न करे बस, हाँ ये पथ्य है, ये पथ्य है। पथ्य क्या? मन जा रहा है, दौड़ रहा है कि नहीं? दौड़ने भी दो उसको, कुछ नहीं करना। खींचने का भी प्रयत्न नहीं करना और छोड़ने का भी प्रयत्न नहीं करना। मन स्वतः जहां जा रहा है आ रहा है, आने दो। उसके साथ राग द्वेष नहीं करना। राग द्वेष मुक्त करके उसको कहीं भी छोड़ो, घूम करके आ जाए, कर्म का बंध नहीं होगा, निर्बंध रहोगे। तो ये ध्यान की कला हम उस समय सिखाएंगे कैसे करना। रखना है ना शिविर, ध्यान शिविर एक बार रखना है। कब रखना है? दशहरा में। दशहरा में ध्यान का सीखेंगे हम बहुत अच्छी तरह से। सामयिक प्रतिमा अच्छी पलेगी। प्रोषदोपवास चौथी प्रतिमा, प्रोषदोपवास चौथी प्रतिमा। टाइम हो गया, 10 मिनट हो गए आपको, ठीक है, बाद में समझा देंगे दोपहर को।
जय जिनेन्द्र। पहिला आरके घ्यायचा आहे, आरकेसाठी उभे राहा. माईक
नियम सागर चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाए हैं, नयन कटोरे ले दीक्षा को तेरे दर पे आए हो. नियम सागर चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाए हे, चरण कमल पर आपको शीश झुकाऊंगी, देख तुम्हारी तपस्या नर नारी हर्षित हो. पंचम युग में महावीर सम तेरा दर्शन पाएंगे. नियम